प्रेरक उद्बोधन। बोर्ड परीक्षा परिणाम से उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए बिलासपुर जिला प्रशासन की पहल। जिले के आला अधिकारी और मोटिवेटर्स 10वीं और 12वीं के बच्चों और पालकों को फेसबुक लाइव द्वारा प्रेरित कर रहे हैं। अर्पा सामुदायिक रेडियो ऐप और वेबसाइट पर इन प्रेरक संवादों का प्रसारण किया जाएगा। सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे, दोपहर 3 बजे से इन दोनों ही प्रेरक उद्बोधनों का पुनः प्रसारण होगा।
इस कड़ी में आज सुनिए बिलासपुर डिवीजन के स्कूली शिक्षा के जॉइंट डायरेक्टर आरपी आदित्य का प्रेरक उद्बोधन।
जी, सभी लोगों को नमस्कार। मैं आरपी आदित्य जॉइंट डायरेक्टर हूं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बिलासपुर में। आज हम लोग परीक्षा परिणाम पर चर्चा करने जा रहे हैं कि परीक्षा परिणाम क्या होता है और उसके कारण से फिर जो तनाव होता है उस तनाव का प्रबंधन कैसे करें। हमारे बिलासपुर जिले के माननीय कलेक्टर साहब के नेतृत्व में बहुत बढ़िया प्रयास रहा है कि लगभग 8 दिनों से लगातार जो हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं और अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, कुलपति साहब जुड़े हुए थे और सब लोगों ने बच्चों का मार्गदर्शन किया है। साथियों, देखिए, जब हम परीक्षा परिणाम की बात करते हैं तो जरा इससे अलग हट करके हम सोचें। हमारी संस्कृति में उत्सव मनाने का की परंपरा है। जैसे हम कृषि प्रधान देश है हमारा और हमारा प्रदेश तो विशेषकर कृषि से जुड़ा हुआ है, ऐसे में हम देखते हैं कि जब साल भर किसान हमारा जुड़ा रहता है, अपना खेती का कार्य करता है और जब उसका परिणाम आता है तो हम अलग अलग तरह के उत्सव मनाते हैं। हम पोंगल देखते हैं, ओणम देखते हैं और इसी तरह से हम छत्तीसगढ़ में छेरछेरा का पर्व मनाते हैं। हमारी संस्कृति इस बात को परिभाषित करती है कि जो हम उत्सव मनाते हैं उस उत्सव में खुशी का माहौल होता है और उसके साथ ही साथ हम में सकारात्मक ऊर्जा बनती है और सकारात्मक ऊर्जा के फलस्वरूप हम सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी उत्सव को मनाते हैं तो उसमें निराशा का कोई स्थान नहीं होता। ठीक इसी तरह से हम देखें कि परीक्षा परिणाम एक तरह से उत्सव है। उत्सव इस मामले में कि हमने जो साल भर पढ़ा है या हमारी साल भर की जो तैयारी रही है या जो हमारा बेस्ट रहा है वह हम उसमें करने की कोशिश करते हैं। और जब परीक्षा हम लिखते हैं परीक्षा हाल में और परीक्षा में जिस तरीके से हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, उसके बाद अब जब परिणाम की बारी आती है तो जो हमने किया है, जो हमने बोया है, जो हमने साल भर परिश्रम किया, मेहनत किया, उसका प्रतिफल हमको यहाँ पर मिलने जा रहा है। कोई भी परीक्षा परिणाम होता है, 10th और 12th के परीक्षा परिणाम हम विगत वर्षों से देख रहे हैं, लगभग 70 से 80% बच्चे पास होते हैं। ये हमेशा की परंपरा रही है कि जब परीक्षा का परिणाम आता है तो परीक्षा परिणाम अधिकांश भाग उसका सुखद होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक मिश्रित भाव के साथ आता है। उसमें डर होता है, थोड़ी चिंता होती है, कुछ मामलों में हम देखें तो उसके साथ साथ में एक रोमांच का अनुभव होता है। तो परीक्षा परिणाम अपने आप में मिश्रित भाव लिया हुआ होता है, किंतु उसमें सबसे बड़ा भाग जो होता है वो खुशी का होता है। अब हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि इस बड़े हिस्से खुशी के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होती जो चिंता और निराशा के विषय होते हैं। यहाँ पर जो निराशा होती है या जिसके कारण से हम कहें कि तनाव होता है, उसी निराशा के कारण तनाव होता है। तो विद्यार्थियों में जो तनाव का जो कारण होता है वो बहुत छोटे छोटे कारण होते हैं। जैसे जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेरिट में स्थान पाते हैं या जो नहीं पाते हैं, उनके साथ ये रहता है कि मेरा मेरिट में पहला स्थान होता, मेरा दूसरा स्थान होता, मैं 10वें में आता जरूर लेकिन किसी कारण से नहीं आ सका, तो वो एक तनाव का कारण होता है। दूसरा होता है कि मेरे डिस्टिंक्शन मार्क्स इसमें नहीं आ पाए किसी विषय में। इसी तरह से होता है कि मेरा प्रतिशत कम हो गया। अब कोई 84-85% लेकर के पास होता है या कोई 90% पास लेकर के होता है, और इस 90% लेकर पास होने के बाद भी यदि यह निराशा का भाव अपने मन में रखता है कि मेरे परसेंट कुछ कम हो गए। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ बच्चों के साथ में रहता है कि मेरा फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए था, वो 1% से रह गया, मेरा सेकंड डिवीजन अच्छा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, थोड़े से कम मार्क्स हो गए। तो ये तो पास होने वाले बच्चों की बात है कि जो अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं फिर भी उनमें निराशा का भाव किसी कारण से उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में हम देखें कि जरा सा हमको हल्के मूड से कहते हैं ना कि कुछ जोक्स वगैरह के साथ में हम चलें, तो मुझे एक जब हम लोग पढ़ते थे तब मैंने एक जोक सुना था और यदा कदा जैसे बात आती है तो मुझे वो बात हमेशा याद आती है कि एक यात्री ट्रेन में यात्रा करते रहता है और उसको आखिरी बोगी में रिजर्वेशन मिला होता है। अब जब वो बार बार किसी स्टेशन पर होता है तो किसी कारण से उसको रहता है कि कोई सामान लेना है या पानी लेना है, तो जब वो लास्ट वाली बोगी में होता है और वहाँ पहुँचते पहुँचते फिर ट्रेन के छूटने का समय आ जाए तो उसकी शिकायत रहती है कि ट्रेन में आखिरी बोगी नहीं होनी चाहिए। अब सोच के देखिए कि ट्रेन में कोई ना कोई बोगी तो आखिरी होगी। इस ये सिस्टम का हिस्सा है कि हर बोगी को हम पहला नहीं बना सकते। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हम देखें कि बच्चों के लिए यदि मेरिट के स्थान निर्धारित हैं तो हर बच्चा पहला आएगा ये संभव नहीं है। कोई पहला आएगा, कोई दूसरा आएगा, कोई दसवां आएगा। इसी तरह से जब हम परसेंट की बात करते हैं तो परीक्षा में हरेक को 90% से ऊपर मिले ये एकदम से संभव नहीं है। ज़्यादातर बच्चे जो अच्छे मेहनत करते हैं उनका मार्क्स अच्छे होते हैं, लेकिन किसी कारण से कोई बच्चा परीक्षा में उपयुक्त प्रकार से नहीं लिख पाया उत्तर को, या हम देखें कि किसी प्रकार से थोड़ी बहुत कोई कमी रह गई है तो उसके कारण परसेंट नीचे हो जाता है। अब इसको लेकर के हम तनावग्रसित हों और इसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएं और घर के लोग परेशान हों या आसपास के लोग परेशान हों, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है कि ऐसे बच्चे जो उत्तीर्ण होने से रह जाते हैं, होता है 20-22% बच्चे उत्तीर्ण नहीं हो पाते, तो इन सब निराशा का कारण हमको पहले सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हमको सबको मिल करके सोचना चाहिए, विद्यार्थी भी सोचें, शिक्षक भी सोचें, पालक भी सोचें और उसका पूरा प्रयास करें कि ऐसी निराशा की स्थिति कम से कम हो। अब यहीं आते हैं हम लोग कि इस निराशा को हम देखें तो कैसे हम इसको निराशा को दूर कर सकते हैं या निराशा से हम हट सकते हैं, अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे अपने आप को उसे दूर रख सकते हैं। तो इसके पहले हमको जानना होगा कि इस परीक्षा परिणाम के बाद जो तनाव होता है उस तनाव का कारण क्या है। तो जहां तक हम देखते हैं कि सबसे पहला यह है कि आत्मविश्वास की कमी होती है। हमने परीक्षा में जो भी किया है उसके प्रति हमारा एक विश्वास रहता है, मन में रहता है कि चलो मेरा मार्क्स 95% आएगा या 85% आएगा, जो भी आएगा। लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि हम दूसरों के देखा देखी में या किसी अन्य कारण से है, हम ये उम्मीद करके बैठते हैं कि नहीं मेरा तो इस बार मेरिट में स्थान रहेगा, जबकि हमारा मन जानता है कि वास्तव में जो मैं प्रश्न हल किया हूँ उसके जो उत्तर लिखा हूँ उसमें थोड़ी बहुत कहीं न कहीं कमी रह गई है। दूसरा कि जब परीक्षा देने की बारी आती है तो मुझे किस तरह से परीक्षा का प्रश्न पत्र हल करना चाहिए वो मैंने नहीं किया है, जितना उसमें लिखना चाहिए नहीं कर पाया है या मैं नहीं लिख पाया हूँ। तो यदि हम एप्रोप्रिएट आंसर नहीं लिखते हैं, हम कुछ भी यदि नहीं मालूम है तो दायां बायां करके कई बार लिख जाते हैं और उसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि हमको अच्छा परीक्षा फल मिले, तो ऐसी स्थिति जो होती है वो चिंता का कारण बनती है। दूसरा है कि यदि मान लो हमारा रिजल्ट थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, यदि मेरे को मेरिट में पहला स्थान नहीं मिला, मेरे को दसवां स्थान मिला है, यदि मुझे 90% मार्क्स नहीं मिले हैं, मुझे 80% मार्क्स मिले हैं, या मेरा फर्स्ट डिवीजन किसी कारण से कुछ अंकों से चूक गया, तो इन सब के बावजूद भी हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं कि हम अपनी आगे की पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। 12th का रिजल्ट मायने रखता है, 10th का रिजल्ट मायने रखता है, हम ये नहीं कह सकते कि मेरिट का कोई महत्व नहीं है, इन सब का महत्व है। लेकिन इसके बावजूद यदि रिजल्ट आपका थोड़ा बहुत कमजोर पड़ता है तो यह नहीं है कि सारे रास्ते आपके बंद हो जाते हैं, इसके बाद भी बहुत सारे विकल्प होते हैं। वो विकल्प हमको नहीं मालूम होते हैं इसलिए हमको थोड़ा तनाव होता है और हम परीक्षा के परिणाम को लेकर के चिंतित रहते हैं और टेंस हो जाते हैं, हम कुछ ऐसा सोचने लगते हैं, नकारात्मक भाव हमें आने लगते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। ये इसलिए होता है कि हमको बाकी रास्ते जो है वो नहीं पता होते हैं या बाकी विकल्प नहीं पता होते हैं, इसलिए ये चीज़ें आती हैं। इसके पीछे एक तीसरा कारण होता है तनाव का। परीक्षा परिणाम को तो हम देखते हैं, लेकिन हमारी कमजोरी कहाँ कहाँ है, हम में क्या कमी रही है, उस पर हम विचार नहीं कर पाते हैं या उस पर विचार कम करते हैं, उस दिशा में हम कम जोर देते हैं और हम चले जाते हैं परीक्षा परिणाम की तरफ कि मेरा परीक्षा परिणाम खराब हो गया, मेरा रिजल्ट खराब हो गया, मेरा फर्स्ट डिवीजन नहीं आया। तो इन चीज़ों को जानने के साथ साथ हम इस बात पर फोकस करें, इस बात पर हम गौर करें कि जब मैं परीक्षा का उत्तर लिख रहा था, प्रश्न अलग अलग प्रश्न पत्र जब मैं हल कर रहा था, तो उस समय मेरी क्या कमियां रह गई थी। और यदि हम इस पर विश्लेषण करें, अपने आप में विचार करें, देखिए किसी विषय का प्रश्न पत्र कितना अच्छा बना है वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। जो विद्यार्थी परीक्षा देता है उस विद्यार्थी से ज़्यादा अच्छा उसको कोई नहीं जान सकता। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे जब हम परीक्षा दे करके प्रश्न पत्र हल करके जब परीक्षा हाल से बाहर आते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ चर्चा करते हैं और उस चर्चा में जब हमारे दोस्त बताते रहते हैं कि मैंने ये बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया, उसी फ्लो में हम भी बोल जाते हैं कि इसको मैंने बहुत अच्छा किया, इसको मैंने बहुत अच्छा किया। आपका अंतर्मन कहता है कि आपको 80% मिलेंगे, लेकिन उस समय एक तुलना रहती है लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ में। उस समय हम ये सोच कर रह जाते हैं कि नहीं, मेरा तो 90% आएगा, और उसी भाव को लेकर के हम लगातार यह सोचते रहते हैं कि नहीं, मेरा तो 90% आएगा, मेरा तो 90% आएगा, जबकि वो रियलिटी नहीं है। आपका मन जान रहा है कि मेरा तो 80% आएगा, लेकिन हम कई बार बोल जाते हैं। तो ये जो छद्म भाव होता है, ये जो कहना चाहिए कि लोगों के सामने अपने आप को नीचा ना दिखाना है, मेरी वैल्यू कम ना हो, मेरा इमेज ना बिगड़े, ऐसा सोच करके बच्चे कई बार जो झूठी बात बोल जाते हैं और एक झूठी परिकल्पना करके रखे रहते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि जो अपनी गलती है, जहाँ पर अपनी कमजोरी है, उसको हम स्वीकार नहीं करते और उसके साथ साथ हम एक बड़ा वो लेकर के बैठे रहते हैं रिजल्ट का, कि नहीं मेरा रिजल्ट तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। और चूंकि यही चीज़ हम अपने पालकों को बताते हैं, तो हमारे गार्जियन भी वही सोचते हैं कि नहीं, इसका तो 90% आएगा, इसका तो 90% आएगा, और जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि 80% है, या जो हम अपना रिजल्ट जो हम बताए रहते हैं उसे थोड़ा सा कम रहता है। तो उस समय हमको शर्मिंदगी महसूस होती है और उस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए हम अपने आप में टेंस होने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी आने वाले सप्ताह में आपका रिजल्ट आने वाला है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप लगभग लगभग कितना परसेंट मार्क्स मिलेगा, आपने क्या किया है, उसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। यदि आप लोगों को कह चुके हैं कि मेरा तो 85% आएगा, मेरा तो इसमें डिस्टिंक्शन रहेगा, मेरा तो मेरिट में ये पोजीशन रहेगा, तो अपने आप को फिर से एक बार चेक कीजिए। और चेक करने के बाद यदि आपका मन कहता है कि चलो मैं थोड़ा सा कम ही सही, लेकिन मेरा 80% आएगा, मेरा 75% आएगा, तो 80% और 75% कोई बुरे मार्क्स नहीं है। आपके बहुत सारे दोस्त हैं, अपने घर में कभी पूछ के देखिए, अपने बड़े भाई बहनों से पूछ के देखिए कि उनका सामान्य रूप से फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, उसके बाद भी उसके सारे रास्ते खुले हुए हैं। यदि कोई बच्चा सामान्य रूप से फर्स्ट डिवीजन से पास होता है, सेकंड डिवीजन से पास होता है, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करता है या स्नातक करता है किसी अन्य विषय में, उसके बाद भी वो यदि आगे बढ़ता है तो ग्रेजुएशन करते समय, पीजी करते समय उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है, उसमें सेलेक्ट होता है। 10th और 12th में यदि कोई कम मार्क्स हैं, थोड़े से मार्क्स कम हो गए हैं, तो उसके कारण से चिंता करने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं बनता है। तो प्लीज़ अपने आप को फिर से चेक कीजिए, एक बार अपने आप को मूल्यांकन करके देखिए अपने आप का, और यदि कहीं पर आप ऐसा बोल चुके हैं या आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलती से अपने आप को 90% में फिक्स करके रखा है, तो नीचे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लोगों को बताइए, घर के लोगों को बताइए कि मैं ज़्यादा की उम्मीद कर रहा था, हो सकता है मेरा मार्क्स जो है थोड़ा सा कम आएगा, और जो आएगा वो जो मैंने हल किया है वो आएगा, और इसके बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं है। यदि मेरा 70% आता है, मेरा कोई फर्स्ट डिवीजन आता है, तब भी मैं उसको लेकर के आगे चलूंगा और उसके साथ में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद आप अपने आप को जब रियलाइज करेंगे, अपने रिजल्ट को जब उम्मीद जो जो आपको है उसके साथ में जब आप चलेंगे, आपके मन में जो चीज़ है उसको आप सीधे सीधे साफ साफ घर के लोगों को बताएंगे, दोस्तों को बताएंगे, और जब वही रिजल्ट आएगा तो आपके पास तनाव का कोई कारण नहीं होगा। एक दूसरा बड़ा फैक्टर होता है कि हम अप्रिय स्थितियों का सामना कम से कम कर पा रहे हैं। अभी का जो वातावरण है, चाहे घर परिवार का कहें या समाज का कहें, अप्रिय स्थितियां हमारे साथ कम बनती है। और अप्रिय स्थितियों को किस तरीके से हमको महसूस करना चाहिए, किस तरीके से उसको हमको लेना चाहिए, कैसे उससे हमको निपटना चाहिए, वो चीज़ें थोड़ी सी कम हो रही हैं। तो यदि किसी के साथ कोई अप्रिय स्थिति आती है तो उसके साथ हमको एंजाइटी होता है, हमको चिंता बहुत होने लगती है, और ये लगता है कि कैसे करके ये हल हो, छटपटाहट होती है। तो इन सब चीज़ों से हमको थोड़ा अपने आप को संभालना है। आप खुद अपने आप का मूल्यांकन कीजिए, और जो वास्तविक जो रिजल्ट हो सकता है उसके आप करीब करीब रहेंगे, उस रिजल्ट को आप अपने आप में ये मान के चलिए कि हाँ भाई मेरा इतना परसेंट आएगा, इससे आपका वो तनाव कम होगा। आपने देखा होगा कई बार, मान लो ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छी कोशिश की है, किसी कारण से आपकी वो कोशिश फलीभूत नहीं हो पाती, आपको ऐसा लगता है कि मेरा रिजल्ट किसी कारण से डाउन हो गया, या मैंने सोचा कि नहीं यार मेरा तो 90% आना ही चाहिए और उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया, आपको लगता है कि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं किसी कारण से, किसी विषय में उत्तीर्ण नहीं हो सके। कोई बात नहीं, आप अपने आसपास में देखे होंगे, बहुत सारी घटनाएं आपको याद होंगी। जैसे मैं जिस गांव में रहता हूं, उस गांव में बहुत सारे कुम्हार हैं, आप भी देखे होंगे, कुम्हार को अपना काम करता है, ईंट बनाने वाले मजदूर हैं वो अपना काम करते हैं, वो अपना सब कुछ लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पूरे लगन के साथ परिश्रम करते हैं, दिन दिन भर पूरा परिवार लगा रहता है, कोई घड़ा बनाता है, कोई ईंट बनाता है, कोई अन्य किसी कार्य को ऐसी करता है, और उसको धूप में सुखाने के लिए रखे होते हैं, कल या परसों उसको पकाने के लिए डालना है। उसके पहले मान लो रात को अचानक बारिश हो जाए, अचानक बारिश होती है, उसकी पूरी मेहनत खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वह किसान क्या करता है, वह कुम्हार क्या करता है, फिर से दूसरे दिन अपनी तैयारी करना शुरू करता है, फिर अपने मटके बनाना शुरू करता है, वो जो ईंट बनाने वाला मजदूर है फिर से अपना ईंट बनाना शुरू करता है, और उसके बाद फिर से वो आने वाले समय में फिर अपनी सफलता को प्राप्त करता है। तो अचानक कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप मान के चलिए ये एक ऐसी आकस्मिक घटना है जिसके कारण से आपका रिजल्ट किसी कारण से बिगड़ गया। अपने आप हिम्मत रखिए, अपने आप को बोलिए मैं हूं ना, और मैं हूं तो आने वाले समय में मैं अपने रिजल्ट को सुधारूंगा, किसी कारण से कोई गलती रह गई है उस गलती को मैं अपने आप में ठीक करूंगा, मेरा अभ्यास में कोई कमी रह गई है मैं ज़्यादा अभ्यास करूंगा, मेरे लिखने की प्रैक्टिस कम थी, मैं जानता तो जरूर था, मेरे लिखने की प्रैक्टिस कम रह गई थी, इसके कारण से मैं पूरे प्रश्न हल नहीं कर पाया था, आने वाले समय में मैं उसको ठीक करूंगा। तो जो 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो अपने आप में मायने रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके कारण से हम बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हों और हम अपने भविष्य को दांव में लगा दें, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आप जिस दिन जागेंगे, जिस दिन आपको लगता है कि मुझे और मेहनत करना चाहिए, उस दिन से आपका भविष्य अच्छा होना शुरू हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है। देखिए वो कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तो ऐसी जब परिस्थिति हो जाए तो हमको सोचना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं हमेशा हम ही सही हों, ऐसा नहीं है। दूसरा, केवल मैं ही अच्छा हूं या मेरा ही रिजल्ट बेहतर है, मैं ही टॉप करूंगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कुछ छोटी चीज़ें जो मेरे ध्यान में आ रहा है कि तनाव प्रबंधन के लिए हमको क्या करना चाहिए, वो एक बार फिर से मैं आपके साथ दोहराना चाहूँगा। देखिए, आपको पता है कि आपने अपना परीक्षा किस तरीके से दिया है, उसका मनन कीजिए और अपना अपेक्षित परिणाम जो आपका हो सकता है उसके आसपास आप पहुंचिए, और उस वास्तविक परिणाम को अपने दिमाग में रखिए कि मैं मेरा इतना परसेंट आएगा, मेरे इतने विषयों में डिस्टिंक्शन होगा, या मेरा सेकंड डिवीजन आएगा, या मेरा किसी एक विषय में पूरक हो सकता है। तो ये सबको जोड़ करके अपने आप से रखिए, आप अपने वास्तविक रिजल्ट के आसपास पहुंचिए, आपको कभी कोई तनाव नहीं होगा, और जो वास्तविक परिणाम आप पहुंच सकता है उसी को आप घर के सामने व्यक्त कीजिए। तो घर के लोगों के साथ जब व्यक्त करेंगे, जो रिजल्ट आएगा लगभग उसी के आसपास रहेगा, आपको कहीं कोई तनाव नहीं होगा। तो एक बार मनन कीजिए फिर से, वो बेहतर होगा। दूसरा जो मेरिट वाले बच्चे हैं या जो डिस्टिंक्शन वाले बच्चे हैं सबसे ज़्यादा टेंस ये होते हैं। आप ये मान के चलिए कि यदि आप किसी रेस में हैं, किसी दौड़ में हैं, किसी प्रतिस्पर्धा में हैं, तो आप बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपसे बेहतर करने वाला भी कोई ना कोई होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बराबर का काम करने वाला बच्चा, हमारे बराबर का पढ़ने वाला बच्चा, हमारे बराबर अंक लाने वाला बच्चा कई बार हमसे ज़्यादा अच्छा मार्क्स ले आता है। कोई बात नहीं, इसलिए कि जिस दिन हम परीक्षा में बैठे हुए हैं उस समय परीक्षा में जब हम प्रश्नों का हल करते हैं, हो सकता है हमसे ज़्यादा अच्छा वो लिखा हो सकता है किसी प्रश्न को जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ मुझसे वो ज़्यादा अच्छा लिखा हो, इसलिए उसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए होंगे। तो हमको ये स्वीकार करना होगा कि मेरे से बेहतर करने वाले भी लोग हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा रिजल्ट डाउन हो रहा है, तो आप थोड़ा नीचे जाके देखिए कि मेरे से कमज़ोर बच्चे भी हैं, मेरे से कम अंक वाले बच्चे भी हैं। जब वो आगे कम्पीट कर सकते हैं, वो आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अपने आप को कहीं कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि आपसे अच्छा करने वाले भी लोग हैं और आपसे कमज़ोर परिणाम वाले भी बच्चे हैं। जब सब आगे बढ़ सकते हैं, जब सब आगे अपना पढ़ाई जारी रख सकते हैं, अपने आप को प्रतिस्पर्धा में ला सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। यदि किसी का रिजल्ट मान लो जो किसी कारण से ख़राब हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि एकदम से जिसकी हमको अपेक्षा नहीं होती है वो रिजल्ट आ जाता है, तो ये भी मान के चलिए कि आकस्मिक घटना दुर्घटना लगी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे परीक्षा देने जाते रहते हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, वो उस दिन परीक्षा में नहीं बैठ पाता है। तो आप मान के चलिए कि जैसा उसके साथ हो गया, हो सकता है कि ऐसी घटना दुर्घटना मेरे साथ भी किसी दूसरे प्रकार की दुर्घटना हो गई कि मैं पास होने वाला था, मैं 2 नंबर से फेल हो गया, मेरा फर्स्ट डिवीजन आने वाला था, किसी कारण से 5 नंबर कम हो गया तो मैं सेकंड डिवीजन में आ गया। अब इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, होता है ऐसा। तो इस तरीके से जब आप सोचेंगे तो आपके पास स्ट्रेस कम होगा। अगली बात यह है कि आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अभी बहुत समय से ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो ग्रुप है, हमारा जो परिवार है, उसमें एक तो ऐसा ही होता है कि छोटे भाई बहन कम हैं और दोस्त कम हैं, मिलना जुलना कम है, तो अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को हम लोगों के साथ बोल नहीं सकते। आपको डर लगता है, कोई बात नहीं। यदि आपको डर लग रहा है तो अपने माँ बाप से, माता जी से, पिता जी से आप उसको शेयर कीजिए। आपके भाई बहन हैं उनके साथ शेयर कीजिए, आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, नहीं मिल पा रहा मोबाइल में शेयर कीजिए, आपके टीचर्स के साथ शेयर कीजिए कि सर मुझे ऐसा ऐसा डर लग रहा है, हो सकता है मेरा फिजिक्स का पेपर बिगड़ा है। अभी एक बच्चा उस दिन बोल रहा था कलेक्टर साहब के सामने कि सर मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री के कारण मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो आप उसको शेयर कीजिए। जब आप अलग अलग लोगों के साथ में इस बात को कहते रहेंगे तो वो डर कम होगा। आपके भीतर जो वो चीज़ घूमते रहती है, जो आपको परेशान करते रहती है, वो बात किसी न किसी तरीके से निकलेगी। और जब निकलेगी बात, जब सामने वाले को आप बताएंगे, तो हो सकता है वो आपको किसी न किसी तरीके से या प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपको उसका कोई हल देगा, आपको उसका कोई निराकरण बताएगा और आपका तनाव कम होगा। तो इन चीज़ों को करें। आपको ऐसा लगता है कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। आपने परीक्षा दिया है, रिजल्ट तो आएगा ही। अब रिजल्ट कैसा रहेगा उस पर बहुत ज़्यादा टेंस मत होइए। आप जो अपनी हॉबीज़ हैं, जो भी हैं, आपको खेलना अच्छा लगता है आप खेलिए, आपको ऐसा लगता है कि मुझे संगीत सुनना है, गाना सुनना अच्छा लगता है तो वो भी देखिए, आपको मूवी जाना अच्छा लगता है तो वो कीजिए, आपको घूमने जाना अच्छा लगता है तो वो कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मेरा रिजल्ट आएगा और मैं तो इस बार डर से परेशान हो रहा हूँ, तो यदि आपको ऐसा लगता है तो आप डरिए मत, आप छोड़ दीजिए, आप परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में, भाई बहन के साथ में घूमने चल दीजिए, मत देखिए आप रिजल्ट को। 2 दिन के बाद अपने आप रिजल्ट आपको मालूम हो जाएगा। परीक्षा दिए हैं तो उसका रिजल्ट तो आएगा ही। यदि आपको डर लगता है छोड़ दीजिए, चिंता मत कीजिए, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आपका रिजल्ट आएगा ही और आप उसी तरीके से जैसा पहले अच्छा करते थे आप उससे और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को अनुशासित रखिए। ऐसा लगता है कि मेरा रिजल्ट आएगा और पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो ऐसे आप में अपने आप को अनुशासित रखिए कि आपका उठने का, बातचीत करने का संयम अपने आप में बनाइए, अपनी सहनशीलता को अच्छा रखने की कोशिश कीजिए कि मेरा रिजल्ट आएगा। कई कई लोग ऐसे होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं, इस बार मेरा रिजल्ट खराब हुआ ना तो मैं ऐसा कर लूँगा, खराब हुआ तो मैं घर से भाग जाऊँगा, खराब हुआ तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा करने से रिजल्ट नहीं सुधरेगा। तो इस तरीके की कोई बयानबाजी मत कीजिए, अपने आप को अनुशासित रखिए, रिजल्ट मैंने जैसा परीक्षा दिया उसके हिसाब से मेरा रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट होगा वो मेरे मेहनत के हिसाब से बेहतर होगा, यदि बिगड़ गया मैं आगे कोशिश करूंगा, बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगा, तो इस प्रकार से सब ठीक रहेगा। और एक एक सबसे महत्वपूर्ण बात, रिजल्ट आपका है, आपका अपने लिए रिजल्ट है, आपकी अपनी मेहनत है, तो हमेशा ये कोशिश करके रखिए, अपने आप को बोल के रखिए कि मैं हूं, आगे सब ठीक रहेगा। आप ही हैं जो अपने परीक्षा परिणाम को अच्छा कर सकते हैं, आप ही हैं जो अपने भविष्य को अच्छा कर सकते हैं, आप ही हैं जो अपने प्रतिस्पर्धा में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरीके से सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक चीजों से जिंदगी नहीं जी जा सकती, तो अपने आप को बहुत अच्छा करने की कोशिश कीजिए कि मैं अपना रिजल्ट अच्छा रखूंगा, बहुत अच्छा होगा। मैं थोड़ा सा जो गार्जियन है, जो माता पिता है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि देखिए, बच्चा समाज का हिस्सा है, आज नहीं तो कल उसको समाज में जाना है, समाज के साथ जुड़ना है। हम लोग किसी भी कारण से, अभी का वातावरण ऐसा चल रहा है या परिवेश ऐसा है, समाज ऐसा है, जो भी कारण है, लेकिन उस सबके लिए जवाबदार हम लोग ही हैं। हम लोग अपने अपने बच्चे को अपने घर तक के सीमित रखते हैं और बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं। ऐसे में थोड़ी दिक्कत होती बच्चे को कि जब वह समाज में जुड़ता है, बहुत से बच्चे देख रहे होंगे जो 10th और 12th के बाद निकल करके जब हॉस्टल जाते हैं, तो हॉस्टल में जब उनको खाने के लिए लाइन लगानी होती है वहां दिक्कत होती है, नए दोस्त बनाने होते हैं वहां पर मुश्किल होती है, रूम शेयर करना है बच्चों के साथ में वहां मुश्किल हो रही है, और इन सब के कारण टेंस रहता है। तो मेरी एक गुजारिश है, मेरा एक अपील है, जैसे हमने देखा है कि घर में बच्चे हैं उनको हम इतनी सुविधा देते हैं कि उसको घर से बाहर निकलने तक की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बच्चे को जाने दीजिए घर से बाहर। एक एग्जाम्पल ले हम कि आप किसी बच्चे को घर से दुकान भेजिए कुछ सामान लाने के लिए, वो दुकान जाता है बच्चा और चिड़चिड़ा करके वापस आ जाता है। जब आप पूछेंगे उससे तो वो कहता है कि मैं दुकान में खड़े रहूंगा क्या, मैं 5 मिनट तक वहां खड़ा था, वो मेरी तरफ देखा तक नहीं, मैं उससे 3 बार पूछा बोला उसको, उसने सामान दिया तक नहीं। तो ऐसे समय में आप सोच के देखिए कि बच्चे की सहनशीलता खत्म होते जा रही है। बच्चा वहां जाता है और वहां जाने के बाद वो ये उम्मीद करता है कि जैसे मेरे को घर में केयर मिल रहा है, जैसे मेरे को घर में प्राथमिकता मिल रही है, हर चीज बोलने के पहले हाजिर हो जाता है, उसी तरीके से मुझे तुरंत वहां भी रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। ऐसा संभव नहीं है। हम लोग भी जब छोटे थे, हमारे पहले जो लोग छोटे थे, हमारे भाई बहन छोटे थे, कई बार ऐसा होता था कि किसी चीज को मांगने की जरूरत पड़ती थी, किसी से कॉपी मांगना पड़ता था, किसी से पुस्तक मांगना पड़ता था, किसी से नोट्स मांगना पड़ता था, और जब उन चीजों को हम मांगने के लिए जाते थे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हमको उतना ही अच्छा व्यवहार हमसे करे, तुरंत करे। तो जब इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है तो बच्चे को सहनशीलता सीखना होता है, अपने आप में बच्चे को सहने की आदत बनती है, और यही सब आदत जो है धीरे धीरे करके एडजस्टमेंट सिखाता है कि कोई अच्छी स्थिति है या कोई अप्रिय स्थिति है, तो उनसे निपटने में यह सब कारगर होता है। हम धीरे धीरे बच्चे को इतनी सुविधा दे रहे हैं कि सब कुछ अच्छी बात है कि हमको करना चाहिए, लेकिन जब हम हर चीज के लिए बच्चे को पूरी सुविधा देते रहेंगे, बच्चे को मांगने के पहले देते रहेंगे, कोई चीज दे रहे हैं वो कैसे आता है, उसका मूल्य कितना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये भी तक नहीं बताते हैं, तो ऐसे में बच्चे को ऐसा लगता है कि सब कुछ आसान है। और जिस दिन उसको इस आसानी के प्रतिकूल थोड़ी सी भी अप्रिय स्थिति बनती है तो वो एंजाइटी का शिकार होता है। तो कोशिश करें कि उसको मिलने जुलने दें बच्चों के साथ में, उसको जो व्यावहारिक चीजें हैं उससे उसको जुड़ने दें, उससे उसको ज्ञान कराएं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम वॉक में भी निकलते हैं ना, बच्चे को घुमाने भी ले जाना है, छोटा बच्चा तब तक केयर करना ठीक है, अब 7वीं 8वीं के बच्चे को जब हम घूमने निकलते हैं तो बच्चे का हाथ पकड़ के चलते हैं कि ऐसा ना हो वैसा ना हो, कुछ भी नहीं होगा। जिस तरीके से हम सब पले बढ़े हैं उसी तरीके से हमारी आने वाली पीढ़ी भी पलेगी बढ़ेगी, लेकिन यदि हम एक्स्ट्रा केयर करते रहेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि उसको कठिनाइयों से निपटने के लिए हम अनुकूल परिस्थितियां नहीं दे रहे हैं और आने वाले समय में वो एंजाइटी का, तनाव का शिकार होगा। तो व्यावहारिक रूप से बच्चों को बड़ा होने दें। जैसे हम पेड़ पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधे स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं, इसी तरीके से बच्चों को भी स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें। उसके रुचि को देखें हम, उसके परिश्रम को देखें और उसके हिसाब से हम उनको आगे बढ़ने दें और ये कहें कि चलो बेटा तुम अपने मन का विषय ले लो, ये विषय अच्छा है, ये विषय ऐसा है, इस विषय में इतनी कठिनाई होगी, इसमें जाओगे तो आगे पढ़ने के ये रास्ते हैं। हम उनको सलाह दें, उनके सामने उदाहरण रखें, लेकिन उस पर कोई चीज़ ज़बरदस्ती ना डालने की कोशिश करें, उसको स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें। उसकी जो अपनी रुचि है, उसका जो अपना परिश्रम है, उसके हिसाब से वो अपना चयन करने लगे और वहाँ पर केवल आप एक मार्गदर्शक के रूप में काम करें। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता अपनी रुचि के लिए बच्चे पर प्रेशराइज करते हैं, कल जोगलेकर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया है, मैं उसमें और नहीं जाऊंगा। रिजल्ट की बात जैसे आ रही, विशेषकर अभी का जो समय है, आप अपने बच्चे की वास्तविकता को जानते हैं। आपने बच्चे जब परीक्षा दे करके आए होंगे तो आपने पूछा है कि बेटा पेपर कैसे बना, कितने मार्क्स आ जाएंगे। आपको पता है कि मेरा बच्चा 60 से 70% के बीच में लेकर के आता है, तो अपने बच्चे की जो वास्तविकता है उसके करीब अपने उसके रिजल्ट को, उसका आकलन करें। कई बार ऐसा होता है कि जब सोसाइटी में बात होती है या समाज में या कॉलोनी में, परिवार में, तो हम कई बार बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि नहीं मेरा बेटा तो इस बार बोल रहा था कि उसका मेरिट में स्थान रहेगा। भाई आप अपने बच्चे को जान रहे हैं कि उसका 70 to 80% आता है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, बहुत अच्छा करेगा तो 85% ले आएगा, मेरिट में आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, जिस दिन आएगा उस दिन मालूम हो ही जाएगा। पहले से बयानबाजी ना करें, पहले से बढ़ा करके अपने बच्चे के रिजल्ट को ना बताएं, इसलिए कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन उसका जो दर्द होगा वो आपको होगा और आपसे ज़्यादा आपके बच्चे को होगा कि मेरे पापा ने बोला है कि मेरा तो इस बार मेरिट में स्थान रहेगा और मैं चूक गया, अब मैं क्या जवाब दूंगा। तो बेहतर है, अभी रिजल्ट आने वाला है, बच्चा अपने आप को समझता है, बच्चे अपने रिजल्ट के वास्तविकता को जानता है, आप भी अपने बच्चे को समझते हैं, उसके रिजल्ट तक आप पहुंच सकते हैं कि अनुमानित रिजल्ट क्या हो सकता है, उससे आप थोड़ा कम ही आकलन करके बताएं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस आप 85% कहते हैं, बच्चा 90% ले आएगा तो रिजल्ट आने के बाद ही वो चीज़ें निकल जाएंगी और किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहेगा, तो इसको लेकर के चले। कई बार ऐसा होता है कि हमको मालूम है कि कुछ बच्चों के रिजल्ट खराब हो गए हैं, ये पता हो जाता है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से वो बात घूम फिर करके आती है, मैं ऐसे बच्चों के साथ जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। लेकिन एक चीज का हम ध्यान रखें कि यदि किसी बच्चे का रिजल्ट थोड़ा कमजोर हो गया, वो 70% बोल रहा था, वो 60% में आ गया, कोई बच्चा पलट के मत बोले कि तू तो 70% बोल रहा था, तेरा 60% कैसे आ गया, तेरा तो हमेशा फर्स्ट डिवीजन रहता था, इस बार सेकंड डिवीजन कैसे हो गया, मत बोलिए। आपको पता है ना कि उस बच्चे का रिजल्ट खराब हो गया है, तो उसके रिजल्ट के बारे में मत पूछिए। कई बार ऐसा होता है कि मोहल्ले में भी ऐसा होता है कि किसी बच्चे का रिजल्ट डाउन हो गया है और हम उत्सुकतावश उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा रिजल्ट क्यों खराब हो गया, थोड़े दिन शांत रहिए, तसल्ली जरूर दीजिए बच्चे को, थोड़े दिन शांत रहें, उसके बाद उस बच्चे को उस रिजल्ट से कैसे अच्छा रिजल्ट बनाया जा सकता है उस पर बात करें, बहुत अच्छा रहेगा। मैं अब थोड़ा सा बात करना चाहूँगा शिक्षकों के साथ में। हर शिक्षक को मालूम होता है कि किस बच्चे को किस तरह की कठिनाई हो रही है, तो परीक्षा के पहले उसकी कठिनाई को दूर करने की कोशिश करें। यदि वो सेकंड डिवीजन का बच्चा है, फर्स्ट डिवीजन आ सकता है, तो उस पर मेहनत करें कि कैसे हम उसको फर्स्ट डिवीजन पर शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे किसी बच्चे का मेरिट में आ सकता है उस पर हम बात करें। तो तो इस पर परीक्षा पर चर्चा जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी लिए थे, शिक्षकों को भी कहा गया था कि आप भी बच्चों के साथ इस तरीके से बात करें, उनको मोटिवेट करें, वो समय निकल चुका है। आने वाले समय में हम बहुत कोशिश करें कि बच्चे का रिजल्ट कैसे सुधरे उस पर बात करें। अभी शिक्षक को लगता है कि इस बच्चे का रिजल्ट बिगड़ सकता है, इस बच्चे का रिजल्ट थोड़ा डाउन हो सकता है, तो उन बच्चों के साथ संपर्क में रहें रिजल्ट के पहले कि बेटा तुम्हारा रिजल्ट आएगा मेरे को बताना, कहीं कोई बात होगी, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछना, यदि कोई परेशानी होगी तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो इस तरीके की बातें जब हम बच्चों के साथ शेयर करते रहेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का तनाव कम होगा। हमको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जो पेरेंट्स हैं उनको और जो बच्चे हैं उनको भी, कि आपका रिजल्ट आने वाला है यह आपको पता है। एक बार फिर से मैं कहूँगा कि अपने रिजल्ट को सोचिए, अपने आप को थोड़ा कम मूल्यांकित कर लीजिए, कोई बात नहीं है, और रियलाइज़ कीजिए कि मेरा रिजल्ट इस तरीके का होगा और ऐसा रिजल्ट होगा, तो अपना एक अभ्यास ही कहिए, प्रैक्टिस कहिए या जो भी कहें कि मेरा रिजल्ट इस तरीके से होगा और मैं उसके साथ कंडीशनिंग अभी से शुरू कर दूं, मैं उसके साथ अनुकूलन शुरू कर दूं कि मेरा मेरिट में स्थान नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आने वाले समय में मैं किसी अच्छे कॉलेज में जाऊंगा, अच्छे नंबर से मैं उत्तीर्ण करूंगा और उसके बाद भी मेरा भविष्य वही रहेगा जो जो मैं चाहता हूँ। तो इस तरीके से अपने आप को आगे के लिए तैयार रखिए। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मैं फिर कहूँगा कि मायने तो रखता है, लेकिन सब कुछ वही है ऐसा नहीं है। उसके बावजूद भी यदि आपका रिजल्ट 2-4% कम हो जाता है, थोड़ा बिगड़ जाता है, किसी बच्चे को दोबारा भी पढ़ना पड़े तो कोई बात नहीं, इसके कारण जिंदगी बेकार हो गई ऐसा नहीं है, मैं कहीं का नहीं रहा ऐसी बात भी नहीं है। अभी आप बहुत छोटे उम्र में हैं, अभी आप 10वीं और 12वीं कक्षा में हैं। पहले तो ऐसा होता था हम लोग के समय में कि जब हम पहली पढ़ने जाते थे, पहली कक्षा में मैं खुद पहली कक्षा में जब परीक्षा हुई तो मैं फर्स्ट पोजिशन पर था, लेकिन इसके बाद भी मेरे पापा जी ने कहा कि नहीं, एक बार फिर से इसको पहली पढ़ाइए, बेस मजबूत होगा। तो पहले ऐसा चलता था, हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे तो उस समय कहा जाता था फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग का रिजल्ट अच्छा रहा, आगे पढ़ते रहे। तो ये मान के चलिए कि एक साल यदि आप रिपीट कर देंगे किसी क्लास को तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। बहुत अच्छा कोशिश कीजिए कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा और अपने आप को स्थिर रखिए। ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो शांत रहना थोड़ा सा सीखें हम, और कहीं पर कोई प्रतिकूल परिस्थिति होती है, निश्चित रूप से आप शांत रहेंगे, उसको सोचेंगे, आपका परिवार आपको साथ देगा और आप तनाव से निकल सकेंगे। कुछ लोगों के प्रश्न दिख रहे हैं कि सुनील शुक्ला जी का है कि मैं 60% सोच करके पेपर देता था और जब रिजल्ट आता था तो 30-35% ही मिलता था। सुनील जी, हो सकता है कि आपका आकलन ऐसा कहीं पर चूक रही होगी, आकलन कर पाने में कोई दिक्कत रही होगी, तो ऐसी कोई बात है तो उसमें अभी आप ये तो मैं नहीं कह सकता कि अभी आप किस स्थान पर हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन बच्चे ऐसा यदि देखें कि यदि उनको लगता है कि मेरा 60% आना चाहिए तो फिर से एक बार उसको सोच करके देखें कि मेरा 60% क्यों नहीं आता है और आने वाले साल में मैं 60% लाऊंगा। यदि आप 10वीं में हैं तो 12वीं के लिए उम्मीद करिए कि मैं 60% लेकर के आऊँगा। यदि आप 12वीं में हैं तो आप कोशिश कीजिए कि मैं ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आऊँगा, और जब आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने आप में विजयी होंगे और आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ अपनी ओर से कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, आपका भविष्य बहुत अच्छा हो। ऐसे बच्चे जिनका रिजल्ट किसी कारण से कुछ कम हो जाता है तो आप मान के चलिए कि ऐसी बहुत सारे विकल्प हैं, ऐसे बहुत से अवसर आपको मिलेंगे, रोज अवसर मिलते हैं कि अपने आप को सुधारते रहें, अपने आप को परिमार्जित करते रहें, निश्चित रूप से आपका भविष्य भी, इस बार कहीं दोबारा पढ़ना पड़े तो कोई बात नहीं, आप यदि हैं, आप अपने आप में चैलेंज को स्वीकारते हैं तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा, आगे के समय में आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में पूरी टीम लगी हुई है, लगातार बच्चों का मार्गदर्शन कर रही हैं। मैं इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से कलेक्टर साहब को और जितने भी हमारे वक्ता रहे हैं उन सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथियों, मैं कलेक्टर साहब के साथ हम लोग मिल करके निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के प्रयास हम लोग लगातार पहले भी करते रहें।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।